देखिए, ये जो हम सोचते हैं ना कि दीन सिर्फ मुसल्ले तक है और दीन तो सिर्फ मस्जिद तक है, लेकिन देखें जी, दीन तो आपको ये भी अब बताएगा, और अल्लाह का नाम तो सिर्फ रमजान तक है, या सिर्फ ताक रातों तक है, या जब कुरान खोलेंगे तब तक है, उसके अलावा नहीं अल्लाह का हमारी जिंदगी में कोई दखल। तो अल्लाह ताला तो आपको ये भी बताता है कि कहाँ पे दोस्ती करनी है और कहाँ पे नई दोस्ती करनी, ठीक है। ला यत्तखिदुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिन ना बनाए काफरों को औलिया मोमिनों के सिवा, यानी मोमिन मोमिनों को सिर्फ अपने दोस्त बनाए, सिर्फ दोस्त इसका माना नहीं, औलिया का मैं आपको माना बताती हूँ, लेकिन औलिया मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ताकि जब इसका ब्रॉडर मीनिंग आपको पता चले तो फिर समझ आएगी। तो मोमिन काफरों को औलिया ना बनाए, वो सिर्फ मोमिनों को औलिया बना सकते, मोमिन ही ये करेगा। जो इंसान मोमिन ही नहीं है तो वो तो हर जगह ही फिर दोस्तियां करेगा, वो ही डजेंट केयर कि अल्लाह ताला ने क्या कहा। अल्लाह ताला ने नहीं, मगर अल्लाह ने तो उन्हीं को बताना है ना जो जो मानेंगे बात को, जो नहीं मानेंगे उनके लिए पूरा कुरान भी उतर गया तो उन्होंने नहीं मानना। मानने वालों ने के लिए अल्लाह का एक हुक्म भी काफी है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मोमिन काफरों को अपने औलिया ना बनाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होते हैं औलिया, किस चीज से मना किया गया है, किस चीज से रोका गया है? औलिया की पहले तो डेफिनेशन पता चले ना, ये औलिया क्या है। औलिया होती हैं दिली दोस्ती, जहां पे दिली मोहब्बत होती है, जहां पे इंसान किसी को अपना मददगार, अपना हमदर्द, अपना प्रोटेक्टर समझता है, अपना सपोर्टर समझता है। इंसान कहता है कि मुश्किल वक्त होगा तो मैं इसकी तरफ जाऊं, ये मेरी मदद करेगा। जिसके साथ इस किस्म का रिलेशनशिप होता है ना, एक बेस्ट फ्रेंडशिप शायद आप कह सकते हो इसको, कि ऐसा एक दिली ताल्लुक। को देखिए, आपकी बहुत सारी दोस्तें हो सकती हैं, लेकिन कई दोस्त आपकी बहुत क्लोज होती हैं। आपको पता होता है जब मेरे ऊपर कोई भी आती है, देखो मैं इसको एक फोन करूंगी, आ जाएगी, आप उसकी तरफ हर चीज में देखती हैं। आपको पता है कि इसके साथ मेरी मोहब्बत है, उसके साथ आप अपने राज शेयर करती हैं, वो होती है दिली दोस्ती, वरना जान पहचान वाले तो बहुत सारे होते हैं। तो यहां पे हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने हमें दोस्ती में भी बताया किसके साथ तुमने दिली दोस्ती नहीं रखनी, और वो है काफिर। काफिरों के साथ आप दिली दोस्ती नहीं रख सकते, तो फिर क्या हो, उनके साथ हम बात ही ना करें क्या, उनके साथ हम कोई अच्छाई ना करें, कोई सलूक ना करें उनके साथ, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। देखिए, हमें इस चीज से मना नहीं किया जा रहा, इंसानी हमदर्दी करने से, सिला रहमी, अगर किसी के रिश्तेदार हैं जो काफिर हैं तो उनके साथ सिला रहमी करने से भी नहीं रोका जा रहा, उनके साथ कारोबार लेन देन ये करने से भी नहीं रोका जा रहा। हाँ, जो रोका जा रहा है वो क्या चीज है, औलिया, औलिया होने से रोका जा रहा है। तो हमें समझना होगा अब कि इनमें फर्क क्या, देखें, और फर्क कैसे, अब इसकी दलील लेकर आते हैं। कुराने पाक में सूरह मुमतहिना में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों के साथ नेकी और अदल करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन में जंग नहीं की, तुम्हारे घरों से तुम्हें नहीं निकाला। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, और ये इंसाफ है, ठीक है। जिसने आपके साथ, कोई आपके दीन में कोई आपका मुखालिफ नहीं है, आपसे जंग नहीं करता, घरों से नहीं निकालता, तुम उनके साथ नेकी और अदल करने से अल्लाह नहीं रोकता। यानी आप, अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला सकते हैं, अगर आप उसको कोई दवा चाहिए आपको दवा दे सकते हैं, उसको कोई इमरजेंसी हो गई आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसके साथ अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं, आप उसकी किसी मुसीबत के अंदर आप उसके काम आ सकते हैं, वो आपकी हमसाईगी में रहता है, उसको कोई चीज की जरूरत पड़ गई आप वो उसको दे सकते हैं, इसमें कोई ममनू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मसला कहाँ आता है, जहां पे आप मवालात करते हैं, जहां पे आप उनके साथ दिली दोस्तियां लगाते हैं, वहां पे मसले आते हैं। अच्छा, अब जहां तक ये है इंसानी हमदर्दी का मामला, वो उनके साथ होगी, इसको कहते हैं मवासात। देखिए, ये जो है ना मवालात है, कोई दर्जे होते हैं उनके साथ ताल्लुक के भी। एक मैंने आपको बताया औलिया बनाना क्या है, मवालात, एक और चीज क्या है, मवासात, सीन के साथ, इंसानी हमदर्दी का मामला, वो आप सबके साथ करेंगे। आप डॉक्टर हैं तो आप ये नहीं कहेंगे ये काफिर है तो इसलिए मैं इसको नहीं चेक करूं, या मैं इसको कुछ और ही गलत दवाई दे दूं, या क्योंकि ये काफिर है ना, नहीं। फिर इसी तरह मदारात, गुफ्तगू में नरमी करना, वो भी आप उनके साथ करेंगे। फिर इसी तरह मामलात, माशरती बर्ताव, आप एक माशरे में रहते हैं जहां पे काफिर भी हैं मोमिन भी हैं सब हैं, आप उनके अंदर माशरे में भी रहते हैं, उनके साथ उनकी दुकान से खरीद रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कोई इसके अंदर मसला नहीं है, ठीक है। जाहिरी दुनियादारी के ये जो सारे काम है ये कर रहे हैं, इसमें कुछ मसला नहीं। यहां पे मसला आता है जब आपने इतनी दिली दोस्तियां गांठ ली। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जब वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कि मेरी वालदा हैं वो मेरे पास आई हैं, वो मुशरिका थी उस वक्त, तो पूछती हैं कि मैं उनके साथ कैसा उसने सलूक करूं क्या नहीं करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनके साथ, आपकी माँ है वो, आप उनके साथ सिला रहमी करें, तो यानी माँ है तो आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन वही माँ अगर दीन से रोकने लगे, वही माँ अगर मुखालिफ हो जाए, वही माँ अगर रुकावट बन जाए इस्लाम के रास्ते में, तो फिर नहीं है उनके साथ ताल्लुकात। इस तरह आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोम के बादशाह ने तोहफे भेजे थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, तो तोहफा लेना भी कोई मसला ऐसा नहीं है। यानी माशरती बर्ताव, खरीदो फरोख्त, कर्ज का लेन देन, आपने यहूदी से भी कर्ज लिया था, बीमार पुरसी करना, आप बीमार पुरसी करने गए थे, एक लड़का था जो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत किया करता था, वो यहूदी का बेटा था, यहूदी है वहाँ, तो आप उसकी इबादत करने गली के लिए गए थे, तो आपने उसको फरमाया था तुम इस्लाम कबूल कर लो, उसने कर लिया था उस वक्त जब वो बीमार था, तो आप उसकी इबादत के लिए गए थे, तो इसका मतलब है कि उनकी इबादत करने में भी कोई मसला नहीं। ताजियत करना, मसलन वो फौत हो गया आप उससे ताजियत करते हैं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, तो किसी ने कहा कि आप खड़े हो गए थे, तो किसी ने कहा ये तो यहूदी का जनाजा है, तो आपने फरमाया लेकिन ये इंसान तो है ना, ये रूह तो है ना, तो उसकी तकरीम की थी आपने। तो ये हमें इन चीजों से पता चलता है कि देखें ये चीजें हम लैग करते हैं और उन चीजों में आगे बढ़ जाते हैं जहां पे दोस्तियां करनी होती हैं। तो इसमें सबके साथ अच्छाई का, भलाई का, खैरख्वाही का मामला करना, खैरख्वाही होगी तो तभी आप उन तक दीन का भी पैगाम पहुंचा सकेंगे ना कि इनकी मैंने खैरख्वाही करनी है। ये नहीं है कि आप उनसे इतनी दुश्मनी ऐसे रख लें कि बस वो आए तो नफरत करें और आए तो उनके साथ बुरा भला उनको कहें, और तो आप उनके साथ क्या खैरख्वाही करेंगे, क्या इस्लाम का पैगाम देंगे। हाँ यहाँ पे तो आपको अपनी डिफाइन करनी है कि मुझे कहाँ तक इस्लाम इजाजत देता है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। गहरी दोस्तियां नहीं करनी, क्यों इस क्यों नहीं करनी, अब लोगों को ये भी बड़ा एतराज होता है क्यों नहीं जी के, क्यों इस्लाम मना करता है, इसलिए कि आप में और उनमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है, आप ईमान वाले हैं वो कुफर वाले हैं, आपकी और उनकी जिंदगियों में फर्क क्या है, मामलात में आपके और उनके हकूक, जो दूसरों के साथ हकूक है उनके अंदर, आपके और उनके जो इबादात हैं, तरीके हैं, खाने पीने के, रहने सहने के, जितने माशरती जो ये चीजें हैं उनमें बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो ईमान का है, एक है वो अल्लाह को नहीं मानता, बगैर किसी कैद के जिंदगी गुजार रहा है, और दूसरा अल्लाह को मानने वाला। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी फिर हम क्या करें, फिर तो रखना पड़ता है क्योंकि फिर इस तरह से तो भाई आजकल वो ही आला पोस्ट में है तो वहां से फिर फायदे मिलते हैं, तो फिर तुम्हें यकीन नहीं है तिल मुल का मंतशा, तो मतलब बताया गया कि वहां पे नंबर बनाने के लिए आप उनसे दोस्तियां ना करें। हाँ एक सूरत हो सकती है, वो दोस्ती ही नहीं, दोस्ती फिर भी नहीं होगी, मगर एक सूरत हो सकती है उनके साथ ऊपर ऊपर के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की, वो कब हो सकती है वो आगे इसमें आ रहा है, वो मैं यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाह फी शैइन, जो ऐसा करेगा तो वो अल्लाह की तरफ से किसी चीज पे नहीं, यानी अल्लाह का अब उसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई अल्लाह के हाँ उसका मकाम और मर्तबा नहीं है, वो अपने आप को चाहे कितना भी मुत्तकी परहेजगार समझे रखे, अल्लाह के दीन से नहीं उसका कोई ताल्लुक, इल्ला मगर ये एक्सेप्शन है, अन तत्तकू मिनहुम तुका, ये कि तुम्हें डर हो उनसे, डरना, यानी या बचना, तुम बचो उनसे, बचना मतलब यानी कि क्या है कि कोई जान माल इज्जत के नुकसान का खतरा हो। और ये खास तौर पे सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जहां पर आप देखें नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे हो सकता है। मुस्लिम कंट्रीज में तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं, फिर भी आप देखें कि वो कितने शौक से ईसाइयों के साथ ताल्लुक रखते हैं और कितने शौक के साथ उनके फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं, उनकी ईदों पे, उनकी क्रिसमस और इन चीज़ों के अंदर कितना उनके साथ पार्टिसिपेट करती हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो गोरी चमड़ी रखते हैं फिर तो बिल्कुल ही पैरों में बैठ जाते हैं, ठीक है। हालांकि इस्लामी मुल्कों में तो ऐसा कोई मसला नहीं होता कि कोई जान माल इज्जत के नुकसान का खतरा हो। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि देखो ये सिर्फ अगर ऐसा है वाकई हकीकी खतरा, महज वहम ना हो कि भाई हम खुद ही, बस पांच दफा हम ना अपने जहन में खुद ही इतना डर बिठा लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं वाकई हमें कोई खतरा है, कोई इस तरह मसला हो जाएगा। नहीं, वाकई कोई हकीकी खतरा हो तो फिर है। तो ये बचाओ के रास्ते के लिए, उनके शर से बचने के लिए बेसिकली, तो उनसे जाहिरी ताल्लुक रखना, मगर फिर भी दिल में नहीं उनके साथ हो जाना, अमल में उनके साथ नहीं जाना, उनके साथ फिर जाहिरी एक अच्छाई का ताल्लुक रखना। इवन आपको ये पता है कि कलमा कुफर तक कह सकते हैं अगर इंसान की इंतहाई मजबूरी हो जाए। और इसकी मिसाल है हजरत अम्मार, कि उन्होंने देखा था कि उनकी वालिदा हजरत सुमैया को कैसे अबू जहल ने शहीद कर दिया था, उनके वालिद को हजरत यासिर को कैसे शहीद किया गया था। तो हजरत अम्मार से फिर जब उन्होंने इतना टॉर्चर किया तो अरे हर एक की बर्दाश्त एक बराबर नहीं होती, तो उन्होंने उनके कहने पे कलमा कुफर कह दिया, मगर फिर भागे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और घबरा गए कि क्या होगा, मैंने तो ये कह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तुम दिल में क्या अपने पाते हो, फरमाया मेरा दिल तो वैसे ही है जैसे पहले था। तो आपने फरमाया ठीक है, फिर आइंदा भी अगर वो कभी तुम्हें ऐसे मजबूर करें तो तुम कह देना कि अल्लाह तो दिलों को जानता है ना, सिर्फ बचने के लिए उनके शर से। अगर ऐसा ऐसे कोई हालात किसी पे आ जाएं, जैसे आज भी दुनिया में बहुत जगह ऐसी हैं कि बेचारे मुसलमानों के ऊपर इस कदर सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, तो उनके शर से बचने के लिए अगर वो ऐसा कुछ कह देते हैं तो ये झूठ नहीं होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं हो गई, फिर ये जायज है यहाँ पे। तो इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो फिर ठीक है, तुम उनके कहने के ऊपर वो बात कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज तुम ऐसे उनसे दिली ताल्लुक नहीं रख सकते। और ये बहुत कॉमन होता है, आप देखते हैं ना कि जब हम काफिर मुल्कों में रहते हैं तो वहां दोस्तियां हो जाती हैं, वहां पे फिर इतने ताल्लुकात आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं लो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। यहाँ पे देख ले अल्लाह ताला ने बता दिया तुम अल्लाह की नजरों से गिर जाओगे, मोमिन कर ही नहीं सकता दोस्ती, क्योंकि वो जहां दोस्ती करता है देखिए हर स्टेप के ऊपर उसको पता चलता है ये डिफरेंट है मेरे से, मैं अलग हूं, ये इनके तौर तरीके अलग हैं, तो वो दोनों के अंदर बहुत फर्क है। और दोस्ती हो ही नहीं सकती उस जगह पे जहां पे इंसान के अंदर इतना फर्क हो, दोस्तियां तो कॉमनैलिटीज पे होती है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, या इधर आप उसके जैसे हो जाएंगे या वो आपके जैसा हो जाएगा। अगर आपका दीन देखना है तो आपके दोस्तों को देख लिया जाए, वैसे ही आपका भी दीन होगा। तो फरमाया हर आदमी को देखना चाहिए अच्छी तरह कि वो किसके साथ दोस्ती करता है, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो इंसान अगर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो बहुत बड़ा खतरा है कि वो भी वो ही तरीके अपना लेगा, इसलिए रोका गया, अल्लाह आपसे हमदर्दी करता है इसलिए रोकता है। ये नहीं कि हम इतराज करने लगे ये क्यों रोका गया, ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्यों कहा गया, नहीं। लेकिन अगर आप दोस्ती करेंगे इंसान को पता भी नहीं चलता किस वक्त वो दोस्ती के अंदर कैसे कॉम्प्रोमाइजेस करने लगता है अपने दीन पे, किस वक्त उसके ऊपर दूसरे का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। हम कहते नहीं हम बड़े मजबूत हैं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताई बात, वो ज्यादा बेहतर जानता है हमारे लिए। वो इंसानों को इसीलिए कहा है कि उसको पता है कि इंसान कैसे, इंसान वीक है चाहे हम अपने आप को कितना भी स्ट्रांग समझें, तो इंसान कयामत के दिन भी कुरान पाक में आता है कि जालिम अपने हाथों को काटेगा, कहेगा काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। ये काटना होता है ना हाथों का, कब होता है, जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, कहेगा काश मैंने रसूल का साथ दिया था, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। तो दोस्तियों के ऊपर पछतावे इंसान को कयामत के दिन भी होंगे कि मैंने क्यों उसको दोस्त बना लिया था। उस यानी उस कई दफा दोस्तों के कहने पे आप बहुत सारे काम करते हैं, खासकर पे जब आपकी बहुत ज्यादा गहरी फ्रेंडशिप होती है, कई दफा दोस्तों की वजह से आपको कई चीजें करनी पड़ती हैं। तो सवाल ये है कि क्यों उनसे दोस्ती करना चाहते हो? क्या उनके पास पावर है इसलिए? क्या उनके पास कोई पैसा है इसलिए? क्या उनके पास कोई कोई तुम्हें अपना मफाद नजर आता है किस लिए? इसलिए करना चाहते हो? इज्जतें लेना चाहते हो? उनके साथ कॉन्टेक्ट होंगे तो मैं बता सकूंगा, क्योंकि बाहर जो गैर मुस्लिम मुल्कों में आप रहते हैं तो वहां पे उन्हीं के पास सारी बड़ी बड़ी ओहदे होते हैं। तो आप क्या उनके साथ दोस्ती करेंगे? तो हम कहेंगे जी फलां सेनेटर के साथ मेरी दोस्ती है, फलां मेयर के साथ मेरी दोस्ती है, मेरी तो फलां गवर्नर के साथ दोस्ती इसलिए। आई अब तक होना इंदा हूं इज्जत, तुम उनके पास इज्जतें तलाश करते, तो मेरी इज्जत बड़ी हो जाएगी। इन्ना लज्जत लिल्लाह जमीया, वही बात आ गई ना। तो आए जुमंगता कि ये यकीन आए तो फिर बात है। तो इससे मना किया गया, इससे बताया गया कि ये हमारे दीन का नुकसान कर सकता है, अल्लाह ताला तुम्हें दूसरों के इन्फ्लुएंस से बचाना चाहता है। और आपको पता है जैसे हम इफ्तार करने कराने वाले को भी दुआ देते हैं ना कि तुम्हारा खाना मुत्तकीन ही खाएं, तो ये दुआ इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दुआ कैसे कि हमें सिखाई मसनू दुआओं में से, कि क्योंकि इंसान जिसको खाने पे बुलाएगा उसके साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, और फिर आगे से आगे अगर वो मुत्तकी नहीं होगा तो फिर उसके रंग में रंगने लगोगे। अरे कितनी खूबसूरत हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत प्यारी है, आप सुने इसको। जन्नत में याकूत के सतूनों पे जमुर्रत के बाला खाने हैं, यानी याकूत पिलर्स हैं याकूत के, रेड होता है ना याकूत, उसके ऊपर ग्रीन कलर के बाला खाने। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है ये किस तरह, मैं तो बता सकती हूँ जो अल्फाज हैं, इससे आगे हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते ना उन चीजों के, रेड और ग्रीन हम सोचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप तसव्वुर में जो लाएंगे वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं तसव्वुर कर सकते ना मैं ना आप, कोई हम में से नहीं कर सकता। तो फरमाया बाला खाने हैं, बाला खाने ऐसे समझ लें जैसे अपार्टमेंट तो नहीं कह सकते मगर हाई राइजेस या पेंट हाउसेस जिनके दरवाजे खुले हुए हैं। ये दरवाजे इस तरह चमकदार है जैसे रोशन सितारे चमकते हैं, कोई वहां पे धूल मट्टी इसका कोई निशान नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये किसके लिए होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उन लोगों के लिए, आप ये सुने, ये उन लोगों के लिए होंगे जो लोग आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, आपस में अल्लाह के लिए एक दूसरे के पास बैठते हैं, आपस में अल्लाह के लिए मुलाकातें करते हैं। तो ये आप देख लें, बहकी की रिवायत है कि इनकी मोहब्बतें, इनकी दोस्तियां, इनके ताल्लुकात अल्लाह के लिए हैं, तो इस बेस पे इनके लिए ये हैं बाला खाने। देखिए दुनिया की खातिर भी दोस्तियां होती हैं, मगर उन दोस्तियों में क्या होता है? उन दोस्तियों में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से बोझ, एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे से मुकाबलेबाजियां, एक दूसरे को कोई खैर मिल जाए तो उससे जल भुन जाना, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचे तो उसके ऊपर खुश होना, ये होता है दुनिया की खातिर दोस्तियों में। किसी की तरक्की देखकर दिल का भिंच जाना, ये होता है दुनिया की खातिर दोस्तियों में, अल्लाह की खातिर दोस्तियों में ये नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस हमें बताई, ये बात फरमाई, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ दोस्तियां करनी है, और उन दोस्तियों का सिर्फ दुनिया में नहीं हमें फायदा होगा, हमें देखो कहाँ तक फायदा होगा। फिर हमें अल्लाह ताला कुराने पाक में सूरह मायदा में यहूद और नसारा को दोस्त बनाने से मना किया, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब वहां पहुंचेंगे, और कि उनको ना दोस्त बनाया जाए, कि जो उनको दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से है। सूरह निसा में है कि काफरों को दोस्त ना बनाओ। तो ये सब चीजें इसलिए, इनमें सभी ये आ गए लोग, इसलिए हमें अपनी दोस्तियों को चेक करना है। वही हद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें डराता है अपनी जात से यानी अल्लाह ताला तुम्हें डराता है कि याद रखो फिर अल्लाह के हाँ तुम्हारी पूछ होगी। अल्लाह ताला तुम्हारी इस अमल से राजी नहीं है, तुम डर जाओ। अल्लाह को पता है कहाँ तुम्हें मजबूर हो और कहाँ तुम्हारा दिल कोई खुशी के साथ तुम दोस्तियां कर रहे हो। इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह की तरफ लौटना है। तो जब पलटना उसकी तरफ है, यहीं पे तो नहीं बैठे रहना कि इनके साथ दोस्तियां लगा के बैठे हुए और ये बस इनसे फायदे ले रहे हैं। नहीं, तुम्हें जाना है वापस, वहां पे हिसाब देना होगा इन दोस्तियों का भी। और कुरान पाक में ही आता है कि मुत्तकीन के सिवा सारी दोस्तियां उस दिन दुश्मनियों में बदल जाएंगी, सिर्फ मुत्तकीन की दोस्तियां जो बाकी रहेंगी उस दिन भी। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमहुल्लाह, कह दीजिए अगर तुम छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में या तुम जाहिर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के लिए सेम है, अल्लाह ताला जानता है। तुम्हारे बताने से बोलने से ऐसा नहीं है कि अल्लाह को ज्यादा पता चला और दिल में रखने से नहीं पता, नहीं, वो सीनों के अंदर की बातें जानता है। वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, कियामत के दिन क्या होगा, सीनों के अंदर के भेद बाहर निकाले जाएंगे। तो दिल को देखना जरूरी है कि दिल में क्या जमा हुआ है, क्योंकि उसी के साथ हम मरेंगे और उसी के साथ उठाए जाएंगे। तो जरा जरा सी बातों को, छोटी छोटी सी बात के ऊपर कीनों को दिल में जमा नहीं करना, दिल में रख लेना बोझ, किसी को माफ ना करना। हम सोचते हैं जाहिर की सफाई कर ली, जाहिर पाक कर लिया, जाहिर नेक बना लिया, तो जाहिर की नेकी से ही पता नहीं मेरा अंदर भी नेक नहीं, अंदर का अलग हिसाब है। देखिए आप यहाँ पे, वही आलम हो माफिस समाती व माफिल अर्ज, उसके जानने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो जानता है तो वो बस ऐसे ही जान रहा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी पूछ हो सकती है। हम सूरह बकरा में इससे सिमिलर आयत पढ़ चुके। तो सिर्फ जाहिरी इसलाह के लिए ना ही कोशिश करें, बातनी सफाई की, बातिन के ऊपर जरूर नजर रखें। बातिन आप, मेरा और आपका कोई नहीं देख सकता। और कैसे हमें पता चलेगा कि क्या चीज बुराई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गुनाह क्या है, फरमाया जो तेरे सीने में खटक जाए और तुम लोगों के सामने उसको जाहिर करने से गुरेज करो, बस वो गुनाह है। यानी आपने जो चीजें अंदर रखी हैं, अगर आपको ये पता चले ये सारी बाहर आ जानी है, ये सबको पता चल जानी है, तो आपको डर लगने लगे ना, समझ लें ये गलत है। बोगस है, हसद है कि भाई कितनी शर्म आएगी, लोग कहेंगे इतनी गंदी थी अंदर से, लोग कहेंगे ऐसी थी अंदर से, तो मुझे तो ये साफ करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि लोगों को ये, लोगों के सामने कहीं ये मेरा भेद खुल ना जाए, लोगों से छुप जाए, लोगों के सामने ना आ जाए, तो समझ लें गुनाह है। क्योंकि नेकी जो होती है ना, नेकी हम चाहे जितनी भी छुपा रहे हो, हमें डर डर नहीं लगता कि हाय लोगों के सामने आ गई तो क्या हुआ, बल्कि खुशी हो जाते हैं, चलो आ गई तो अच्छा ही हुआ। ये गुनाह अगर इंसान को होता है कि हाय लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, तो जो सीने में खटकता है वो गुनाह है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है। अगर अगर इसके ऊपर ही हम अपने अंदर को चेक कर लें तो काफी आसानी हो सकती है कि हमने अपने अंदर से क्या निकालना है। अयालम माफिस समावाति व माफिल अर्ज, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है वो सब को जानता है, तो क्या मेरे अंदर और आपके अंदर को नहीं जानता? अल्लाहु आला कुल्ली शयइन कदीर, फिर दोबारा आया, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहतरा, एक वो दिन भी आने वाला है जिस दिन इंसान पाएगा हर उस अमल को जो उसने नेकी में से किया अपने सामने। एक दिन जरूर ऐसा आने वाला है जब गैब के पर्दे फट जाएंगे और इंसान के सामने होगा जो कुछ वो कर चुका, चाहे हम भूल भी चुके हों, हमें कहाँ याद रहता है वैसे। अच्छा, नेकियां तो बड़ी अच्छी तरह याद रहती हैं, लेकिन अपनी बुराइयां हमें नहीं याद रहती। किस वक्त क्या बोल गए, किस वक्त क्या कर गए, किस वक्त क्या, किस तरफ देख लिया हमने, किस वक्त क्या नियतें कर ली हमने, वो हमें भूल ही जाती हैं। लेकिन उस दिन जो भी इंसान ने किया होगा मिन खैरी नेकी में से, वो भी हाजिर हो जाएगा। वह माँ अमिलत मिन सू एन, और जो भी उसने अमल किया होगा बुराई में से, हर नफ्स के सामने वो हाजिर कर दिया जाए। हम जैसे सूरह जिलजाल में पढ़ते हैं, मैया अमल मिथकाला दर्रतिन खैरन यरा, मैया अमल मिथकाला जर्रतिन शर्रन यरा। इंसान को तो जर्रे के बराबर भी ना, जर्रा, जर्रा की डेफिनेशन या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब आप राई का दाना कहीं लिखा तर्जुमा देखेंगे, हालांकि जर्रा का मतलब राई का दाना नहीं है, जर्रे का मतलब ये कि सबसे छोटी चीज। अब एक वक्त में राई का दाना होगा, आज हमारे लिए एटम या प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चीज होंगे, इतनी सी चीज भी ला दी जाए, हर नेक अमल कितना ही छोटा हो और कितना ही छुपा हो वो भी आ जाएगा। और हर सू, सू भी बड़ा जामे लफ्ज है, उसमें अल्लाह को नाराज करने वाला हर अमल है वो भी आ जाता है। सब चीज लोग कहते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है भला, इतनी सी बातों पे कोई भला अल्लाह पकड़ेगा, इतनी सी बातों पे भला अल्लाह ध्यान देगा। यहां देखिए खुद को खड़ा करके कि जब हर अमल सामने आ गया, तवद्दुलौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदं बाईदा, इंसान का हाल पता है तब क्या होना है, वो तब ये नहीं कहेगा लो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो छोटा सी बुराई है इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये यहीं के डायलॉग है इस दुनिया के, ये वहां पे नहीं बोलेगा कोई, वहां पे क्या होगा तवद्दु, वो चाहे वो तो होता है ना बहुत ज्यादा शदीद चाहत, इंसान डिजायर करेगा, वो कहेगा काश ऐसा हो जाए, लो अन्ना क्या चाहेगा, काश के अन्ना बहीना हा वो बहीना हूँ आमादम वहीदा, काश मेरे और इस बुरे अमल के दरमियान इतना लंबा फासला होता, इतनी दूरी होती, इतनी दूरी होती मुझे नजर ही ना आता, ये इतना दूर मुझसे हो जाता, यानी वो उससे बचना चाहेगा कि मैं कैसे इससे अपनी जान छुड़ा लूं, क्योंकि ये जो गुनाह है ये जहां पे चिमट जाते हैं ये नजर तो नहीं हमें आते, जैसे हमारा वेट गेन होता है ना, हम एक दिन वो वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो पता चलता है भाई इतना वेट गेन हो गया, कोई आपको अपने पर बोझ महसूस होता है वेट का, नहीं होता, 10 पाउंड भी बढ़ जाए तो हम वैसे ही चल रहे होते, हमें पता तो नहीं चलता, इसी तरह गुनाह है हमें यहाँ पे नहीं पता चलता, वो जब हम वहां स्केल पे खड़े होंगे ना तब पता चलेगा हाय इतने हमारे ऊपर थे, ये इतनी चीजें थी, ये सब थी, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ इंसान महसूस नहीं करता, तो वो मंजर कितना खौफनाक होगा कि इंसान के सामने ये चीजें लाई जाए और उसको पता चल जाएगा मैं तो अब पकड़ा गया, अब भागने की कोई जगह नहीं आई, काश मेरे और इसके दरमियान इतना फासला हो, हत्ता कि इंसान ये चाहेगा काश उसके ऊपर जमीन फ्लैट कर दी जाए, यानी वो जानवरों को देखेगा तो कहेगा काश मैं भी मट्टी हो जाता जैसे ये मट्टी होगा। आज गुनाह छोड़ने बड़े मुश्किल लगते हैं ना, बड़े मुश्किल लगते हैं, देख ले इंसान अपने गुनाहों से उस दिन कितना खौफजदा होगा, उदियल किताबु फतल मुजरिमीना मुश्फिकीना में माफी, अल्लाह तआला ने सूरह काफ में फरमाया ना जब किताबें रख दी जाएंगी तो मुजरिम अपनी अपनी किताबों को देख के डर रहे होंगे, उनकी क्या हालत होगी, ये तो मेरे कारनामे सारे सामने आ गए। अल्लाह अकबर, वाइज़ सुहुफ नुशीरत, जब इंसान के आमाल नामे नशर किए जाएंगे, इंसानों के आमाल नामे सबके सामने आ जाएंगे, तो अभी जो मैंने आपको बताया है ये इंसान कहेगा काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया, तो बहुत सारी हसरत करेगा। इसी तरह एक जगह पे ये आता है कि शैतान के लिए वो कहेगा काश मेरे और इसके दरमियान मशरिक और मगरिब के दरमियान तक का फासला होता, इतना फासला होता, इतनी उसको होगी कि मैंने क्यों इसके रास्ते पे चला, काश ये मेरे से दूर हो जाए, ये मेरे गुना इतने दूर हो जाए, आज कितने प्यारे लगते हैं ना ये गुना, आज कितना इनमें मजा आता है ना, आज सीने से लगाए हुए हैं, आज छोड़ने को तैयार नहीं है, हाय कैसे इसके चीज के बगैर रह सकती हूँ, नहीं फिर तो लाइफ बड़ी रूखी पिकी हो जाएगी, नहीं कैसे हम इन चीजों को छोड़ें, नहीं ये तो आज नॉर्म है, नहीं ये तो आज सब करते हैं, देख लें फिर उसके बाद इन इन्हीं गुनाहों का जो वबाल है और इनके ऊपर पछतावे कितने शदीद होंगे। और फिर जैसी नेकियां भी भेजी होंगी वो वैसी ही वहां पे स्टोर होंगी, कई नेकियां बड़ी थकी हुई नेकियां होती है ना, थकी हुई नेकियां, ये लफ्ज शायद नहीं सुना उनमें, तो वैसे अपने ही तौर पे यूज कर रहे हैं कि थकी हुई नेकियां कौन सी होती, कर तो ली लेकिन बस मारे बांधे की जैसे तैसे, क्वालिटी ऐसी नहीं है, वो भी पता चल जाएंगी और बड़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की भी पता चल जाएंगी, कई नमाजें बड़ी थकी हुई होती हैं है ना, कई और भी काम होते हैं बड़े ऐसे ही होते हैं। अब देखें एक दुआ इस्तफ्ताह जो है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका पढ़ते हैं ना अक्सर, तो एक और भी मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाइदता बैन अल मशरिकी वल मगरिब, वो पूरी लंबी दुआ है। तो आप मसनून दुआओं में देख सकते हैं जो किताबें हैं नमाज की, कि इंसान जब नमाज शुरू करता है तो कहे ए अल्लाह बाइद बैनी व बैना खताया, या अल्लाह इतनी दूरी कर दे मेरे और मेरी खताओं के दरमियान जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी है, यानी इतना मुझे उनसे फासले पे कर दे। क्योंकि अगर यहाँ पे फासला ना किया तो वहां पे तो फिर इंसान चाहेगा भी तो फासला नहीं हो सकेगा। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने आप से डराता है, यानी अल्लाह अपने अजाबों से तुम्हें डराता है, अल्लाह बड़ा शफकत वाला है अपने बंदों के ऊपर। तो ये क्या फिर मतलब इनका आपस में क्या ताल्लुक हुआ कि एक तरफ आया अल्लाह अपने आप से डराता है, दूसरी तरफ आया अल्लाह बड़ा शफकत वाला मेहरबान। असल में अल्लाह की ये तो मेहरबानी तो है कि अल्लाह ताला यहीं पे तुम्हें बता रहा है कि देखो डर जाओ, तुम वहां पे उस वक्त कहोगे काश इन गुनाहों के और मेरे दरमियान इतना फासला होता, देखो डर जाओ आज, देखो समझ लो आज, ये अल्लाह की शफकत नहीं है तो और क्या है। जैसे बाप अपने बच्चे को कहता है बेटा ये ना कर दो इसका बड़ा नुकसान है, तो उसको डरा रहा है बेटा गाड़ी तेज ना चलाना एक्सीडेंट हो जाएगा, बेटा ये चीज ना इस्तेमाल करना इसके अंदर ये इसका नुकसान है, तो आप कहें कि वो डरा रहा है, वो डरा नहीं रहा, असल में इसमें उसकी शफकत है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी शफकत है, वो कितना रहीम है कि वो दुनिया के अंदर बैठे इंसान को वहां के नजारे करा रहा है जो आपको कोई नहीं बता सकता। आप जाएं साइंस को खंगालें, फिलसफे को खंगालें, आप जाएं मैथ पढ़ें साइंस पढ़ें, कोई इल्म आपको ये नहीं बता सकता कि इंसान के साथ क्या गुजरेगी जब कयामत आएगी। ये सिर्फ फकत अल्लाह की जात बता सकती है, क्योंकि वो जानता है फ्यूचर को भी ऐसे ही जैसे हाल को जानता है, जैसे माजी को जानता है, इसी तरह मुस्तकबिल को जानता है। उसको पता है एक एक डायलॉग जो इंसान बोलेगा, उसको पता है एक एक ख्याल जो उठेगा, उसको पता है उन हसरतों का जो इंसान के अंदर उस वक्त होंगी, वो जानता है जो पछतावे होंगे लोगों को, वो आज हमें बता रहा है। ये उसकी शफकत नहीं तो और क्या, वो डरा रहा है कि डर जाओ, लेकिन लोग डरने को आज तैयार नहीं है। वो कहते हैं ऐसी बातें ना किया करो, ये ना हमें बताया करो, ये खौफनाक बातें हैं, हमें बस ये बताओ कि जैसे हम मरेंगे तो बस सीधे हमने जन्नत में चले जाना। ये बातें सुनने को बहुत तैयार होते हैं, ये बात सुनने को नहीं तैयार होते कि देखो उस दिन हसरतें, देखो उस दिन पछतावे, देखो उस दिन कैसे इंसान कह रहा होगा, देखो उस दिन उसकी नेकियां और बदियां सब सामने आ जाएंगी, देखो अपने सामने ये सूरतों में आएंगी, नेकी की भी सूरत होगी बदी की भी सूरत होगी, ये शक्लें होंगी इनकी वो आपके सामने होंगी। इवन कब्र के बारे में आता है कि इंसान का नेक अमल उसकी कब्र में आ जाएगा, उसको कहेगा मैं तेरा नेक अमल, बुरा अमल कभी सूरत के अंदर आ जाएगा कब्र के अंदर, कहेगा मैं तेरा बुरा अमल हूं मैं तेरे साथ ही अब रहूंगा। तो ये शक्लें तैयार कर लेंगे, ये जो आज कुछ नहीं लगते ना, दिस इज नथिंग, कोई बुराई कर ली इट्स ओके, इट्स ओके, हम कितनी आराम से कह देते ना इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, इतनी बड़ी बात बना ली है, कुछ नहीं हो जाता। ये जो हम कहते हैं ना कुछ नहीं होता या होता है, ये तब पता चलेगा जब हाजिर कर दिया जाएगा हर चीज को, हर अमल को, हत्ता के जर्रे के बराबर अमल को भी। उस दिन क्या करोगे, फकई फायदा जमाना हूं, इसने तो सारी बात ही खत्म कर दी, क्या बनेगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा। कुल कह दीजिए, आप ये जो आयत आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये फरमाया, आप कह दीजिए। ये वाली आयत उलमा कहते हैं कि ये आयत इम्तिहान है, इंसान के इम्तिहान की आयत। अच्छा चले हम वैसे तो टेस्ट देते ही हैं, ये भी टेस्ट दे देते हैं, अल्लाह ताला ने टेस्ट रखे हैं। अच्छा टेस्ट आप देखिए, एक टेस्ट ये भी आप देते हैं ना जो सिपारे का टेस्ट होता है, तो ये देख लें अयालम माफी समाती माफी लद, और अल्लाह क्या जानता है इन तो खू माफी सुदूरी को मौत हो तो बदो, हम ना आपको देख रहे हो कुछ भी ना, कोई भी नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है वो जानता है। अल्लाह ताला दिलों के अंदर को भी जानता है, उसको पता है दिलों के अंदर किसकी क्या है, कितनी मोहब्बत किससे है, किनकी तरफ को मिलान है, किनकी तरफ को दिल खिंचता है। बड़े अच्छे लगते हैं वो, और किन से दिल में तंगी सी आ जाती है, बैकवर्ड से लगते हैं। अब जाए जुबान से या अपने बातों से हम कितना भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम बड़े नेक हैं, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना दिलों में क्या, तो वो दिलों की कुछ बात आ रही है और यही इम्तिहान है। तो लेट्स सी हम इस इम्तिहान में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, अपना भी जरा हम अपना अपना इम्तिहान लेते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी आप इनसे कह दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। इसलिए ये कहा गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये दावे होते हैं ना, हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, बस मैं तो क्या बताऊं कितनी मुझे मोहब्बत है, तो बस मैं तो रो पड़ती हूँ, मैं तो ऐसे हो जाती हूँ, ये हो जाता है। तो ठीक है अगर तुम ये कहते हो कि भाई मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, फत्तबिउनी, तो ए नबी आप इनसे कह दें फिर मेरी इत्तेबा करो। यो हबीबकुमुल्लाह, दो चीजें अल्लाह तुम्हें देगा, नंबर वन वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, वह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम। यानी एक बंदा अगर चाहता है कि मैं अल्लाह की मोहब्बत पा लूं तो उसका भी तरीका उसको पता चल गया, फत्तबिउनी, ए नबी आप उसको कह दें मेरा इत्तेबा करो, यानी अल्लाह का नहीं, यहाँ फत्तबिउनी कुल कह के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरा इत्तेबा करो, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी आप कह दें मेरा इत्तेबा करो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करो। ठीक है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरी बात ये, जो लोग भी कहते हैं मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, वो अपने आप को चेक कर लें, टेस्ट करें कितनी इत्तेबाए रसूल है उनकी जिंदगी में, जितनी रसूल की इत्तेबा जिंदगी में होगी उतना ही ये दावा सच्चा है। और अगर इत्तेबाए रसूल नहीं है, रसूल के तरीके पसंद नहीं है, रसूल की जिंदगी पसंद नहीं है, रसूल जैसी जो जितने भी उनकी लाइफ के तरीके थे, उनकी एग्जाम्पल थी, वो बैकवर्ड सी लगती है, तो ये तुम्हारा दावा झूठा है कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, झूठा है। याद रखें ये जो महबूब होता है ना उसका महबूब भी महबूब होता है, अल्लाह के महबूब है नबी अलैहिस्सलाम। कैसे हो सकता है कोई अल्लाह से मोहब्बत करता हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि बस नाते आए तो हम झूम झूम जा रहे हैं, नातों की महफिल में बैठे हुए हैं, सर धुन रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और बड़े लहक लहक के हम साथ साथ पढ़ रहे हैं बड़ी मुझे मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कोई मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं होती, उनका इत्तेबा है मोहब्बत। जानते हैं इत्तेबा किससे बनता है? मिलके इत्तेबा दो चीजों से बनता है, लिख लें इसको, पत्ता भी ऊनी है ना, जाहिर हमने इत्तेबा करनी है, अगर अगर हमें सारों को शौक है कि हम वाकई हम भी इस इम्तिहान में पूरे उतरे, अल्लाह ताला ने तो क्राइटेरिया बता दिया कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करनी है ना तो तुम मेरे नबी का इत्तेबा करो, बस बात खत्म। ना तुम्हें इतना शौक है ना कहने का, ये जो डायलॉग है इससे नहीं अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़ता कि आप और मैं कितने डायलॉग बोले और हमें कितना, मेरे अंदर तो मोहब्बत ही बहुत है, इससे नहीं फर्क पड़ता अल्लाह को, उसने ये देखना है आप उसके रसूल के कितना इत्तेबा करते हैं। तो इत्तेबा करें कहाँ, क्या होता है इत्तेबा? इत्तेबा वैसे इसका लफ्जी मतलब होता है फॉलो करना, यानी फुटस्टेप्स को फॉलो करना, पैरवी, पैर जिसके कदमों के निशान, कोई चल रहा है ना उसके कदमों के निशान है, आप उनके ऊपर अपना पैर रख के जा रहे हैं, ये होता है इत्तेबा, वैसे आपको एक बता रही हूँ। और ये रसूल का इत्तेबा क्या है? दो चीजों से मिलके बनता है, मोहब्बत और इताअत। समझ आ गई बात? मोहब्बत और इताअत मिलती हैं तो इत्तेबाए रसूल बनता है। अच्छा, ये रसूल के साथ मोहब्बत है और रसूल की जो इताअत है उससे इत्तेबा बना, और जब अल्लाह के साथ मोहब्बत और अल्लाह की इताअत होती है तो इज इक्वल टू इबादत। यानी आप ये लिख लें, मोहब्बत अल्लाह से और इताअत अल्लाह की इज इक्वल टू इबादत, और मोहब्बत रसूल से प्लस इताअत रसूल की इज इक्वल टू इत्तेबा। बस सिंपल एज दैट, ठीक है ना। यानी इताअत सिर्फ हुक्म पे अमल करना और जो किसी ने मना किया उससे रुक जाना, लेकिन इत्तेबा इससे ऊपर का दर्जा है। इत्तेबा में इंसान इंतजार नहीं करता कि कोई हुक्म दे, बस जो दूसरे को पसंद होता है वो पसंद आने लगता है, जो दूसरे को नहीं अच्छा लगता वो नहीं अच्छा लगता। समझ आई बात? इत्तेबा इश्क है। इत्तेबा वाकई मोहब्बत ना हो तो इत्तेबा हो ही नहीं सकता। आप अच्छा इसकी एग्जांपल ऐसे देखें, आपके बच्चे किसी प्लेयर को पसंद करते हैं, किसी स्पोर्ट्स वाले को पसंद करते हैं, क्या आपको कहना पड़ता है बेटा उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाओ, बेटा उसके जैसी बात करो, बेटा उसके जैसा चलो, बेटा उसके जैसे देखो, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत है ना? नहीं। क्या होता है जब उसको वो अपना हीरो बना लेता है, जब उसको अपना आइडियल बना लेता है, जब उससे बड़ी मोहब्बत करता है, तो अब वो बाल भी वैसे बनाता है, वो चलता भी वैसे, वो बोलने भी वैसे लगता है, खुद ब खुद करता है, किसी ने कहा नहीं होता उसको। इसी तरह जब रसूल की मोहब्बत आती है ना, तो फिर कोई कहता नहीं है कि भाई अच्छा अब आपने उनको फॉलो करना, खुद ब खुद इंसान फॉलो करता है। तो एक मोहब्बत भी जरूरी है, एक जज्बाती ताल्लुक भी जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ रूखा बुखा, हाँ वो हमारे नबी थे उन्होंने हमें ये सिखाया इसलिए बस, नहीं, मोहब्बत जज्बात होने चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालिद और उसकी औलाद से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं, यानी आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं। हजरत उमर ने फरमाया था ना, या रसूलल्लाह आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब है मगर सिवाय अपनी जान के। वो सच्चे लोग थे ना, हमारी तरह नहीं थे, नहीं जी आप तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, उसके बाद जब वक्त आया तो पता ही नहीं जी कहाँ पे है। अब कुरान मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, मुझे इतना प्यारा है, चूम चूम के मैं इसको रखती हूँ। जब शादी ब्याह का मामला है, जब विरासत का मामला आया, तकसीम करने का, जब कारोबार का मामला आया, पता ही नहीं है कुरान भी कोई चीज थी, पता नहीं कोई पढ़ा भी था कुछ, वो फिर नहीं उससे फिर उसकी परवाह नहीं है। तो ये नहीं होती मोहब्बतें। तो वो सच्चे लोग थे ना, हजरत उमर ने फरमाया लेकिन बस मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है आपसे, बाकी हर चीज से ज्यादा आप प्यारे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान नहीं मुकम्मल होता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो हजरत उमर ने फिर फरमाया था कि या रसूल आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, इतना प्यार करते थे। तो फिर जब इतनी मोहब्बत आती है तो फिर इताअत भी आती है, फिर इंसान कहता है ये हुक्म करे तो फिर, और फिर इंसान के ऊपर वो लेवल आता है मोहब्बत का, जब मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाती है ना, फिर इंसान ये नहीं कहता अब ये कोई हुक्म करेगा तो फिर मैं करूंगा, फिर इंसान कहता है कि इसके कहने से पहले ही वो उसके चेहरे को देख के ही कहता है कि ये चीज को नहीं अच्छी लगी, नहीं ये नहीं करनी, ये इसको पसंद आई है ये करनी है। आप इतनी सारी मिसालें आप देख सकते हैं कि जो सहाबा ने मोहब्बत की उनसे सीखे मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत क्या होती है। कि जिस वक्त एक सहाबी ने, वो आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, एक ही दफा आए और उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के बटन खुले हैं, तो उन्होंने सारी जिंदगी फिर अपने बटन बंद ही नहीं किए कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखा था। एक सहाबी है कि वो जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के नीचे से क्रॉस करके जहां पे पड़ाव डाला था, वो जब सफर करते थे उसी के नीचे से गुजरते थे और वहीं पड़ाव डालते थे, कि नहीं चाहे नहीं भी जाना वहां पे, वहां पे पड़ाव जरूर, चाहे नहीं पड़ाव की जरूरत, वहां पे इसलिए पड़ाव डालना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पड़ाव डाला था, वो यहां से गुजरे थे तो वो यहां पे ठहरे थे। तो इसलिए आप ये देखें कि उनकी मोहब्बत कैसी थी। गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पांव रखा हुआ, सांप ने आके डस लिया और उस वक्त मुंह से सी तक नहीं निकाली सांप के डसे पे भी, लेकिन आंखों के ऊपर तो इख्तियार नहीं ना, आंखों से आंसू टपके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरे तो तब आपकी आंख खुली, पूछा क्या बात हुई। ऐसी मोहब्बत जब इतनी लेवल की आती है ना तब होता है। अब देखें ये जो आइडियलाइज करते हैं लोग एक्टर्स को या स्पोर्ट्स वाले लोगों को, वो कोई आगे इनको देख रहे हैं कि ये भाई इन्होंने वो हेयर स्टाइल बनाया कि नहीं, इन्होंने वो कपड़े पहने कि नहीं, ये मुझे कॉपी कर रहा है कि नहीं, फिर इंसान कॉपी करता है। इत्तेबा क्या करना होता है, कॉपी करना, इमिटेट करना, किसी की नकल उतारना। वो वाली बुराई सेंस में नहीं, नकल से मतलब ये कि जैसा वो कर रहा बस मैंने वैसे ही करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि एक दफा कुर्ते का बाजू लंबा था तो उसको काटने के लिए छुरी मंगवाई, किसी ने पूछा क्यों, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा देखा था, हो सकता है उनके पास कैंची ना हो उस वक्त, उन्होंने ऐसे काटा था तो मैंने भी ऐसे ही काटा। तो देखें वो तो ऐसी चीजों में भी जिनका आपने कोई हुक्म नहीं दिया है, जिनका आपने नहीं कहा कि ऐसे करो, वो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद तो कद्दू खाना, सिर्फ इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, ये होती है इत्तेबा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, वो ये कि ये तो साइड की हो गई चीजें कुछ, पर ओवरऑल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा जाए तो आपकी जिंदगी को आप क्या कहेंगे कि आपकी जिंदगी का महवर क्या था, किस चीज के गिर्द जिंदगी गुजरती थी, खाने पीने के गिर्द घूमती थी, सैरो तफरी के गिर्द घूमती थी, या और कोई ऐशो आराम की गिर्द घूमती थी, या कि कमाइयां करने की गिर्द घूमती थी, तजारतें उस वक्त किस चीज के गिर्द घूमती थी बताएं। अगर आपको एक सेंटेंस में पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का पूरी का, हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे, कैसे खाते थे, और पूरी जिंदगी का महवर क्या था, उनकी लगन क्या थी, उनकी बेचैनी क्या थी, उनका गम क्या था, उनकी जिंदगी क्या थी, दीन का पैगाम आगे पहुंचाना, सही है ना। तो जब इत्तेबा करने लगे और इसी बात को अगर भूल गए जो मेन उनका सेंटर ऑफ लाइफ था, तो क्या इत्तेबा किया आपने, चाहे आपने वो चीजें खा भी ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था आपने मीठा खा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद थी आपने ये खा ली, खजूर खाते थे आपने वो खा ली, चलो दाढ़ी रख रहे थे किसी मर्द ने दाढ़ी रख ली, ठीक है वो अपनी जगह बातें, लेकिन ये पॉइंट ना भूलें कि उनकी जिंदगी का सेंटर क्या था, उसमें इत्तेबा ना की तो फिर किसमें की। हमने तो इस काम से जो उनकी जिंदगी का महवर था उसको करना तो दूर की बात है, उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं हमने, तो वो चीज को फॉलो करना तो बाद की बात है, हमने तो जो उनके गम थे उसका गम भी नहीं लगाया, वो गम हमारा है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेने के लिए इतने बेताब होते थे, जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे, अल्लाह ताला ने मना फरमाया नबी आप जल्दी ना याद करें, आप इसमें ना जल्दी करें, हमारा काम है आपको याद कराना। शौक इतना था इस पैगाम को पहुंचाने का कि हालात किसी किस्म के भी थे आपने पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ा। आपका क्या ख्याल है मुझे आप लोग बताएं, आपका क्या ख्याल है, मक्का में बहुत आराम के हालात थे या टेंस थे, स्ट्रेस था कि मजे थे, उससे ज्यादा टेंशन के क्या हालात हो सकते, ये हर वक्त इधर उधर से कोई ना कोई परेशानी, किसी सहाबी के साथ ये हो गया, किसी के साथ वो कर दिया काफरों ने, कोई काफरों ने ऐसे कह दिया, किसी जगह को बैन कर दिया, ये कर, और एवरी टाइम कोई ना कोई टेंशन वाली चीज थी। मगर क्या आप सरासर आराम से बैठ गए कि अभी हालात सही नहीं है, जब हालात सही होंगे तब काम करेंगे, अभी नहीं, अभी दावत का काम इस वक्त नहीं हो सकता, जब सब चीजें देखें ना, चीजें तो सेटल हो जाएं, अभी तो मैं टेंस हूं बहुत, नहीं, जब अल्लाह की तरफ से आ गया सूरह मुजम्मिल की आयात आ गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे उठ खड़े हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पहुंचाया, हम तो सिर्फ इतनी छोटी बातों पे ही कह देते ना कि नहीं अब तो ऐसे नहीं है, अब तो हालात नहीं, अब तो कोरोना है, अब तो फलाना है, अब तो ये है, हमें तो हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, हमने नहीं कुछ करना, हम कर ही नहीं सकते, नहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा तो नहीं, ये इत्तेबा तो नहीं है। हर हर फील्ड में देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपकी इबादत कैसी थी, पैर सूज जाते थे खड़े खड़े रात में, आप लिखना नहीं जानते थे लेकिन कितने खतूत लिखवाए आपने बादशाहों के नाम, ये ईमान ले आओ, हम तो अपने पढ़े लिखे होके हम अपने करीब वालों को भी नहीं पहुंचा सकते, दूर तक खतूत पहुंचाने तो दूर की बात है, तो आसानियों को तलाश ना करें, वक्त को ना सोचे कि जब वक्त आएगा ना ऐसा तो तब करूंगी, जब हालात ऐसे होंगे ना तब करूंगी, वक्त तो बहुत लिमिटेड है, ये किसी के लिए नहीं रुकना, ये जिंदगी नहीं रुकनी किसी के लिए, इसी में काम करना है, उनकी वाली फिक्र को अपनी फिक्र बनाना है, उनके वाले गम को अपना गम बनाना है, उनकी वाली तड़प को अपना तड़प बनाना है, वो लगन हमारे अंदर, वो डेडिकेशन हो, कोई कहे नहीं कहे, कोई कोई कह रहा है नहीं कह रहा, कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, कोई चेक कर रहा है नहीं कर रहा। मैं अल्लाह के दीन के लिए काम करने में इतना शौक रखूं, इतनी डिटर्मिनेशन हो मेरी कि मुझे किसी की परवाह ना हो, मैं किसी के लिए काम ना करूं। मैं इसलिए करूं कि ये मेरे नबी की लगन थी, मैंने इस दीन के मिशन को आगे लेके चलना। मैं जहां अपना हिस्सा डाल सकती हूँ मैं डालू, मैं अपने आप को खपाऊं इसमें, लगाऊं इसमें। लेकिन हमें अगर जिम्मेदारी भी दे दी जाती, अगर कोई नहीं पूछता तो जी उसके बाद पता ही नहीं है, कोई पूछेगा तो जागेंगे, कोई पूछेगा नहीं तो कोई परवाह नहीं। अगर अल्लाह चांस दे देता है ना कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ आप करें, तो खुशकिस्मती समझे अपनी और दुआ किया करें अल्लाह ताला इसमें इखलास भी दे और मुझे लगा दे इसके अंदर, मुझे हिकमतें दे कि मैं बेहतरीन तरीके से अपने इस काम को करूं। लेकिन हमारा हाल क्या होता है, शुरू तो बहुत शौक से करते हैं, मुझे ओहदा मिल गया, मुझे पोजीशन मिल गई, मुझे उसके बाद क्या है, उसके बाद कहीं पता ही नहीं, उसके बाद कामों में सुस्ती है, उसके बाद कामों में सर से उतारने वाले काम है, बस वो जाए बस मारे बांधे का कर लिया ना, उसके बाद वो लगन नजर नहीं आती। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो फिर सोचें, हमें तो वैसे वाले, हमें तो वहां तक अल्लाह माफ करे हमें और कभी ना ऐसा हो, मगर वो ऐसी मुखालफतों का सामना नहीं, हमें वैसे हालात नहीं, फिर भी हम कितने आराम पसंद है, फिर भी हम नहीं लगाना चाहते अपने आप को इस तरफ, फिर भी हम नहीं चाहते कि हम उनका उनके वाले बेचैनी और उनके वाले गम को अपना गम बनाए, हमारे पास और बहुत चीजें गम लेने की। तो उनका इत्तेबा करना है तो सबसे पहले अव्वलीन चीज ये है, और उसके अलावा भी सारी चीजों में ही फिर देखें, सारी चीजों में ही देखें। लेकिन अगर आपका दिल घुटता है ना उनके वाले हाल हुलिये से, आप उनके वाला हाल हुलिया किसी को देखते हो ना, ये क्या ऐसे के साथ तो शादी भी नहीं करनी, दाढ़ियां रखी हुई हैं, ये देखो इनकी पजामे किधर जा रहे हैं ऊपर, देखो जरा इनके टखने नंगे हुए हैं, ये कैसे कार्टून से हैं। अगर आपको ये लगता है ना नाउज़ु बिल्ला, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऑनेस्टली देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा आ जाए तो वो भी ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, उनके ये हाल हुलिए होंगे, उनके तो तहबंद भी जो है वो ऊंचे होते थे, पिंडलियों तक होते थे, तो क्या कहेंगे उनको फिर, यहीं से चेक कर लें, पत्ता भी उन्हीं क्या करना। अब औरतें तो मर्दों वाली चीजों को नहीं इत्तेबा वो कर सकती हाल हुलिये में, मगर हमारे क्राइटेरिया क्या है, हमें वो अच्छा लगता है जो क्लीन शेव हो, हमें वो अच्छा लगता है जो जिसने चुस्त कपड़े पहने, जो लेटेस्ट कोई हीरो बन के आया, हमें वो अच्छा लगता है, हमें कहाँ ये हाल हुलिये अच्छे लगते। तो हमने क्या इत्तेबा करनी है, हमने तो हमारे तो लगता है कि दावे भी फेक हैं, मोहब्बत अल्लाह से, मोहब्बत रसूल से, क्या मोहब्बत है जिस मोहब्बत में किसी के शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, किसी का हाल हुलिया भी अच्छा नहीं लगता, किसी के वाली लगन भी अच्छी नहीं लगती, किसी वाली इबादत भी बोझ लगती है, किसी के वाली जिंदगी भी अजीब लगती है, ये है इत्तेबा। तुम इत्तेबा करोगे ना, अल्लाह ताला ने एक मॉडल दे दिया और ये मॉडल दे के अल्लाह ताला ने बता दिया सारी इंसानियत के लिए, वन पर्सन इज रोल मॉडल पूरी इंसानियत के लिए, तुम इस रोल मॉडल पे सब अपने आप को परखो, ये क्राइटेरिया, तुम देखो तुम कितने सिमिलर हो इससे और कितने दूर हो इससे, जितने तुम इस रोल मॉडल के करीब होगे उतनी तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत के लिए ही करेंगे, और जितने तुम इस रोल मॉडल से दूर हो उतने ही तुम अल्लाह की मोहब्बत से दूर, और अल्लाह भी तुमसे तभी मोहब्बत करेगा जब तुम ये वाली जिंदगी लेकर आओगे। एक रोल मॉडल अल्लाह ने खड़ा करके बता दिया और उनकी जिंदगी को प्रिजर्व कर दिया, हमारे तक एज इट इज पहुंच गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बाथरूम गए, कैसे निकले, कैसे इबादत की, कैसे आप अपने दोस्तों के साथ होते थे, कैसे आप अपने बच्चों के साथ होते थे, कैसे आप लोगों के साथ होते थे, कैसे आप अपनी बीवियों के साथ होते थे, कैसे आप मामलात किया करते थे, आपकी तिजारत कैसी थी, आपके और अदलो इंसाफ कैसा था, आप गरीबों के साथ कैसे थे, मोहताजों के साथ कैसे थे, बीवाओं के साथ कैसे थे, गुलामों लौंडियों के साथ आपका क्या ताल्लुक था, आप हुक्मरान कैसे थे, आप हर चीज में आप देख लेना, आपने चीज बेची तो कैसे थे, आपने खरीदी तो कैसे थे, हर चीज में तो आपके पास पूरी की पूरी उनकी जिंदगी पड़ी हुई है। इतबा करना तो आसान है, ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ से करें, नहीं आपके सामने है। हाँ मगर वो दिल लेकर आओ जिसमें इतनी मोहब्बत हो कि फिर मैंने इतबा करना है नबी का, और वो ही बेस्ट चीज है। आई डोंट केयर क्या दुनिया वाले इसको कैसे देखते हैं। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पे कहा कि अगर रोटी नीचे गिर जाए तो उसको झाड़ के खा लो। अब आ जाओ आप किसी के सामने करें तो सही, आपके दुपट्टे के ऊपर भी कुछ गिर जाए तो आप उठा के खाएं, कहेंगे कितनी भूखी है, कितनी नदीदी है। आप पूरा का पूरा शरबत या पेप्सी को पूरा पी लें ग्लास में से तो कहते हैं हाँ ये कितनी है, इसको पता नहीं घर में मिलती नहीं। हाँ हमने अपना नॉर्म ये समझा ना, थोड़ी सी हमने छोड़नी है ताकि लोगों को पता चले मैं इतनी ऐसी नदीदी नहीं हूँ। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉर्म नहीं था, ये तो उसको जाया करना है। मैं तो छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ कि हमने नॉर्म क्या बनाए हैं और नॉर्म है क्या, क्या होने चाहिए हमारे क्राइटेरिया। अल्लाह अकबर, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम इस नबी का इत्तेबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुमसे भी मोहब्बत करने लगेगा। तो अब हमारा सबका शौक होता है अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हम दुआएं करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल लदी युबल्लिगनी इला हुब्बिक। तो अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिले और कैसे पा सकूं वो लेवल कि मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा, एक बात बता दी गई, पूरी जिंदगी आपको दिखा दी गई। अब चलें इस जिंदगी के ऊपर, कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए इतात करो अल्लाह की और रसूल की, कहना मानो जो तुम्हें कहें कि ये करो तो उसको करने लगो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाते हैं ना सूरह हशर में, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, उसे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि रसूल ने तो ये काम किया नहीं मैं जी उनसे भी आगे बढ़ जाऊंगी, ये नहीं। उन्होंने तो पूरी रात नहीं नमाज पढ़ी मगर मैं तो ईशा से शुरू करूंगी और फजर तक, नहीं। अब इताअत, फाइन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, और देखिए यहाँ पे इताअत अल्लाह की भी है रसूल की भी, इत्तेबा अल्लाह की नहीं हो सकती, इत्तेबा सिर्फ रसूल की हो सकती, क्योंकि इताअत तो है ना जो हुक्म दिया वो करो और जो जिसे मना किया उसे रुक जाओ। इत्तेबा क्या है, इत्तेबा उनकी जिंदगी को फॉलो करना, और वो तो सिर्फ रसूल की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं वो जो मुनकरीने हदीस हैं वो किस इस आयत को कैसे फॉलो करेंगे, जब कहा गया अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत तो चलो कुरान से कर ली, रसूल की इताअत किधर से करेंगे, वो हदीस को ही नहीं जो मानते। फैन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, फैन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। काफिर यहाँ पे कौन है, काफिर वो यहाँ पे वो नहीं है वो जो बुत परस्त है, काफिर वो है जो अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत को छोड़ दे और किसी औरों की इताअत शुरू कर दे, जो उनकी इताअत को कुछ ना समझे वो है यहाँ पे काफिर। अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमाए, रसूल की जिंदगी की इतबा की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने,
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين